namo vasaya namo loe savesa hunam mangalam bhagavan viro mangalam gotemo gani mangalam kunde kundaryo jain dharmo su mangalam sarva mangala mangalyam sarva kalyani karikam pradhanam sarva dharmanam jainam jetu sasanam jainam jetu sasanam jainam jetu sasanam it bhav taruka molaik janahu mithya bhav tako kari nirmol av kari he moksha upav अपना यहाँ पर जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला ग्रंथ की क्लास चल रही है, जिसमें अभी तक 205 नंबर के प्रश्न हो गए हैं। 205 नंबर तक के प्रश्न हो चुके हैं, जिसमें गुणस्थान की और भावों की अपेक्षा वर्णन आया है। तो पिछली क्लास में भी गुणस्थानों का वर्णन चल रहा था, गुणस्थान के नाम, गुणस्थान क्या है, इन सबकी चर्चा पिछली क्लास में भी हुई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि गुणस्थान क्या है। द्रव्य है, गुण है, पर्याय है जी, बोलो बोलो क्या है और गुण स्थान पर्याय ना कि द्रव्य है और ना गुण है। नाम गुण आया है लेकिन उसके बाद वाला शब्द भी आप पकड़ो ना, स्थान। स्थान मतलब जगह, जगह मतलब कि जहां पे जो द्रव्य है उनका, उनके जो गुण है और गुणों का क्या हो रहा है, परिणमन हो रहा है। तो गुणों के परिणमन को क्या कहा जाता है, पर्याय। तो ये जो 14 गुणस्थान है ये क्या है, पर्याय है। लेकिन कैसे बनी ये पर्याय, तो गुणस्थान की परिभाषा से हम समझते कि कैसे ये पर्याय बनी। गुणस्थान के याद, इनकी परिभाषा याद करने के लिए आपको सिर्फ 3 शब्द याद करना है, ठीक है। कब याद करना, क्या मोह जोग हवा गुणस्थान। मोह और योग के निमित्त से गुणस्थान होते हैं, ठीक है। उसकी पूरी परिभाषा अपन देखना चाहें तो मोह और योग से होने वाली तारतम्य रूप अवस्थाएं उन्हें गुणस्थान कहते हैं, बराबर। तो मोह और योग के निमित्त से ये 14 गुणस्थान हुए हैं। और ये सब किन किन जीवों के लिए है गुणस्थान, हाँ तो मतलब मनुष्यों के लिए है, त्रियंस के लिए, त्रियंस के भी है, अच्छा देवों के, देव मतलब भगवान है, देव मतलब स्वर्ग, देव गति के देव, उनके गुणस्थान है, उनके भी, उनका भी है। अच्छा नारकियों के, नारकियों के भी। तो मतलब संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के गुणस्थान हैं, बराबर। और ऐसा कोई है जो गुणस्थानों से रहित भी होते हैं, सिद्ध भगवान, इसलिए उनको क्या कहते हैं, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, बराबर। तो ये तो नक्की हुआ कि संसार में सभी जीव कोई ना कोई गुणस्थान में है, बराबर। और अपन ने गुणस्थान को कैसा समझा था कि द्रव्य है, द्रव्य में हर एक द्रव्य में अनंत गुण है। तो यहाँ पे जीव द्रव्य की चर्चा चल रही थी, तो जीव द्रव्य में अनंत गुण और उन गुणों का जो परिणमन होता है तो वह मोह और योग के निमित्त से होता है, और जो मोह और योग के निमित्त से हुई अवस्था उसे गुणस्थान कहते हैं। बराबर, ये सब चर्चा अपनी पहले भी हुई है। अब अपन जो 206 नंबर का प्रश्न है उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। किस किस गुणस्थान का कौन निमित्त है, मतलब कौन से गुणस्थान में क्या क्या निमित्त है, इसकी चर्चा अपनी यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से पिछली क्लास में 14 गुणस्थानों के नाम याद कराए गए थे, बराबर ना? हाँ, तो कोई सुनाना चाहता है 14 गुणस्थान के नाम? हाँ बोलिए। बस ये 14 गुणस्थान आप सभी को याद करना है। ठीक है, तो जैसा कि अभी इनको याद है तो आप सब भी प्रयास करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। और 14 गुणस्थान मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुणस्थान में हम भी हैं, और नहीं तो क्या बोला था कि गुणस्थानातीत तो कौन है, सिद्ध भगवान। तो जितने यहाँ पर रहते हैं वो सब कोई ना कोई गुणस्थान में तो हैं, बराबर। तो पहले गुणस्थान में हैं तो कैसे हम आगे बढ़े, पहले मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे हम आगे के गुणस्थानों में बढ़े और फिर बढ़ते 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 क्या हो जाएं, गुणस्थानातीत हो जाएं, इन गुणस्थानों से भी पार हो जाएं, बराबर। इसलिए क्या करना कि जैसे बने वैसे आगे बढ़ने का प्रयास करना। तो आगे बढ़ने का प्रयास कैसे करेंगे, पहले पता तो रहना चाहिए ना कि किसने आगे बढ़ना है, तो इसलिए आप सब भी याद करना। पहले चर्चा हो चुकी है कि कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान में जाएंगे, बराबर, इनकी चर्चा सुमिल भाई ने लिए थे। अभी अपन जो यहाँ पर 206 नंबर का प्रश्न है उसी में आगे बढ़ते हैं। आदि के चार गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी कर्म का निमित्त है, बराबर। आगे के जो चार गुणस्थान हैं कौन कौन से, इधर से कोई बोले चार गुणस्थान के नाम तो बोलो। हाँ देख कर बोलो, कोई बोलो मिथ्यात्र और अविरत सम्यक, बराबर। मिथ्यात्र ससाधन और जो मित्र कहा है, मित्र के को क्या कहेंगे, उसका नाम क्या है पूरा, मित्र मतलब, मित्र मतलब तो होता है मिला हुआ, तो हाँ क्या मिला हुआ, हाँ बोलिए, सम्यक मिथ्यात्र, बराबर। सम्यक और मिथ्यात्र दोनों वहां पर मिला हुआ है, उस अवस्था को वहां पर मित्र कहा गया है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि चार गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी कर्म का निमित्त है, बराबर। तो कैसे कि पहला गुणस्थान है और उसमें दर्शन मोहिनी कर्म का निमित्त है, जिसके कारण हम सब तो नहीं, जो जो हैं, मैं सभी को नहीं कह सकता कि सभी उत्तर दृष्टि है, और यदि सम्यक दृष्टि भी हो तो यहाँ पर तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जो पहला गुणस्थान में है तो उसमें क्या निमित्त है कि दर्शन मोहिनी कर्म, बराबर। तो दर्शन मोहिनी कर्म से क्या होता है, मिथ्यात्व, और जो मिथ्यात्व सहित है तो वह क्या है, मिथ्यात्व दृष्टि। फिर पहले गुणस्थान से आगे बढ़े तो कौन सा गुणस्थान आता है, पहले के बाद दूसरा आएगा ना, नहीं, यहाँ पे थोड़ा क्रम अलग है, बराबर। पहले के बाद डायरेक्ट आप चौथे गुणस्थान में पहुंचोगे, बराबर, क्या कि पहले गुणस्थान के बाद डायरेक्ट चौथा गुणस्थान होता है, और उस चौथे गुणस्थान का नाम क्या है, अविरत सम्यक, मतलब वहां पर व्रत तो नहीं है। क्या व्रत नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अन्याय अनिति और अवश्य इन सब का सेवन करता है। व्रत नहीं धारण कर पाया है, लेकिन जैसे बने वैसे सब अन्याय अनिति अवश्य इन सब से बचने का प्रयास करता है। बराबर। तो कहने का तात्पर्य क्या था कि पहले से डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में यह जीव जाता है, मतलब मिथ्यात्व से डायरेक्ट किसकी प्राप्ति होती है? यदि मिथ्यात्व का अभाव होगा तो सम्य दर्शन की प्राप्ति, मिथ्यात्व का अभाव सम्य की प्राप्ति। तो जो चौथा गुण स्थान है वह सम्य दृष्टि का। बराबर। लेकिन अब चौथा गुण स्थान में तो था, लेकिन अभी क्या हुआ कि थोड़े थोड़े परिणाम जो है डगमगाने लगे। कभी सोचता ये सही है या ये सही है, तो परिणामों में डगमगाने लगे। तो कभी श्रद्धा भी वैसे होने लगी कि चलो देवता गुरु तो सही नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है। इस प्रकार से सात तत्व का श्रद्धान, उनमें जीव आदि तत्वों का श्रद्धान किया, लेकिन कभी हंसी कि ये भी सही है या ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा जब श्रद्धा गुण में होने लगा तो बोलते हैं ना, उसकी श्रद्धा डगमगाने लगी, उसको अटल श्रद्धान नहीं रहा कि जो सात तत्व है उनमें जो मैं जीव तत्व हूँ, मेरा स्वरूप जानना देखना है, इस प्रकार का अडिग श्रद्धान नहीं रहा। तो जब ऐसा श्रद्धान नहीं रहा तो वहां पर उसे तीसरे गुण स्थान की प्राप्ति होती। बराबर। तो ये क्या सिद्ध हुआ कि पहले से चौथे में तो गया, लेकिन अभी श्रद्धा गुण जब अटल नहीं रहा, डगमगाने लगा, तो तीसरे गुण स्थान की प्राप्ति होती, इसलिए उसे मिश्र कहा। क्या कि अभी ऐसा भी नहीं है कि मिथ्या दृष्टि हो गया, और ऐसा भी नहीं है कि अभी पूरा का पूरा सम्यक बना हुआ। ठीक है। तो वहां पर उसे तीसरे गुण स्थान की प्राप्ति होती है, लेकिन अभी उसके पास क्या है, चांस है। तो वो क्या करेगा, तीसरे से फिर से ऊपर जा सकता है। बराबर। चौथे गुण स्थान, और फिर यदि चौथे गुण स्थान से यदि अपने सम्यक से च्युत हो जाए और देवसाज गुरु की असाधना या सात तत्व में जैसा श्रद्धान था वैसा श्रद्धान ना रहे, तो सात तत्व इत्यादि की असाधना ऐसा असाधना हो जाए, तो उस जीव को चौथे गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान की प्राप्ति होती है। तो उसका नाम क्या है, सा साधन। सा साधन मतलब असाधना सहित। इसने क्या किया, सम्यक। सम्यक मतलब वहां पर चार प्रकार के सम्यक है ना, कोई बताएगा चार प्रकार के अपन सम्यक को समझ सकते हैं। पहला, देव सात गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बराबर। सच्चे देव सात गुरु का श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। दूसरा, हाँ, सात तत्वों का श्रद्धान, तो सूत्र बोलेंगे तो क्या है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कहाँ लिखा, तत्वार्थ। बराबर। तो दो हो गए। तीसरा, हाँ, स्वपर। स्वपर का विवेक होना, तो उसका कहा आपा पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आत्मा अपना और पर का पर रूप श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। और आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन, मतलब अपन तीन ये चार प्रकार से सम्यक दर्शन की परिभाषा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे कि जब यह जीव ने इन चारों प्रकार से असाधना किया, देव का गुरु का सच्चा श्रद्धा नहीं रहा, सात तत्वों का सच्चा श्रद्धा नहीं रहा, आपा पर अपना और आत्मा का अपना और पर का अपना अपने रूप पर का पर रूप श्रद्धा नहीं रहा और आत्म श्रद्धा नहीं रहा, तो यह जीव ने जो असाधना की उसके कारण इसे दूसरा गुण स्थान की प्राप्ति होती है, बराबर। और जब दूसरे गुण स्थान की हुई प्राप्ति तो क्या हुआ उसके बाद, बोलो जोर से बोलो, दूसरे के बाद क्या होगा? हाँ, एक में ही जाए, बराबर। तो वह पहले गुण स्थान में फिर से चला जाए, तो फिर से क्या हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया। ये तो ठीक है, कोई बात, मिथ्या दृष्टि हो गया, लेकिन एक एक लाभ तो अभी उसको है। कौन सा? मिथ्या दृष्टि हो गया, ये तो बराबर है, लेकिन इससे क्या सिद्ध हो गया? एक बार की सम्यक्ति, एक बार सम्यक्ति की प्राप्ति हो गई, अभी मिथ्या दृष्टि है बिल्कुल पहले गुण स्थान में, लेकिन इससे एक चीज सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? हस्तादी हो गई। और मतलब क्या कि कभी ना कभी तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, एक बात तो सिद्ध हो गई बेटा। क्या? सम्यक दर्शन की एक बार प्राप्ति हुई है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन में यह जीव मोक्ष जाएगा ही जाएगा, बराबर। तो अब यहाँ पर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आदि के चार गुण स्थानों में दर्शन मोहिनी कर्म का निमित्त है, पांचवे से लेकर बारहवें गुण स्थान तक आठ गुण स्थानों में चारित्र मोहिनी कर्म का निमित्त है। मोहिनी कर्म के दो भेद कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के निमित्त से तो बताया चार गुण स्थान, और अब चारित्र मोहिनी, तो जो मोहिनी कर्म है उसके टोटल भेद कितने हैं? अच्छा जी, बराबर। मोहिनी कर्म के जो टोटल भेद हैं वह हैं अठारह, जिनमें से तीन दर्शन मोहिनी के और चार हैं, पच्चीस चारित्र मोहिनी के। किसी को नाम याद है कि तीन कौन से और पच्चीस कौन से? पच्चीस को तो एक शब्द भी दिया जाता है, कौन सा? पच्चीस कसाय, बहुत इजी है इनको याद करना। तो पहले तीन देखते हैं, कौन सा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, बराबर। ये दर्शन मोहिनी कर्म के भेद, और फिर चारित्र मोहिनी कर्म के पच्चीस भेद हैं, उन्हें याद करना बहुत इजी है। कैसे? क्रोध मान माया लोभ सबको याद रहन। तो अब इनको जो चार कसाएं हैं इनका गुणा चार उनमें अनंतानुबंधी चार चौपड़ी में किया जाता है। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन। तो चार का गुणा चार में किए तो कितना हो गया? सोलह, बराबर। तो सोलह का नाम याद हो गया। फिर नौ नौ कथाएं, यहां पर यह समझने योग्य है कि ये गिनती में भी नौ है, ठीक है, और इनका नाम भी नौ है। तो वहां पे जो नाम है वो नौ नहीं, नाइन नहीं है, वहां पे जो नौ नाम है या नौ कथाएं कहा जा रहा है वो नौ मतलब होता है किंचित, कुछ किंचित कसाय है, तो कसाय लेकिन किंचित है, बराबर। तो किंचित कसाय या नौ नौ कसाय वो नौ प्रकार की है। एक बार मैं नाम बोल देता हूँ, आप सब भी याद करना, नहीं तो बहुत सी जगह अपने इनके नाम आते हैं, उनमें से देखकर भी आप याद कर सकते हो। नौ नौ कथाएं कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, बराबर। ये तीन हो गए, फिर स्त्री सॉरी ये छह हो गए और इसके बाद स्त्री पुरुष और नपुंसक भेद, स्त्री पर नपुंसक भेदा ऐसे ये नौ कथाएं होती है बराबर। तो ये नौ कथाएं और ये 16 कथाएं टोटल मिलकर 25 कथाएं होती है जिनके निमित्त से चारित्र मोहिनी कर्म बंधता है या चारित्र मोहिनी कर्म की ये 25 अवस्थाएं होती है बराबर। तो यहाँ पर अभी पहले से 14 गुण स्थान तक दर्शन मोहिनी कर्म का निमित्त बताया और अब 5वें से 12वें गुण स्थान तक चारित्र मोहिनी कर्म का निमित्त बताते हैं। तो गुण स्थान कितने? गुण स्थान 14 है लेकिन अभी जो चर्चा है वो 4 की हुई और अभी 5वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक जो चारित्र मोहिनी कर्म है उससे जो अवस्थाएं होती है उनकी चर्चा यहाँ पर आएगी। देखो 8 गुण स्थानों सॉरी 5वें से लेकर 12वें गुण स्थान तक के 8 गुण स्थानों को चारित्र मोहिनी कर्म का निमित्त है और बचे कितने? 2 बराबर। कौन से? नाम कयोग के लिए और अयोग के लिए। तो योग आया ना दोनों के लिए राशि स योग योग सहित फिर अयोग योग रहित लेकिन इनमें निमित्त क्या है? योग का निमित्त होने के कारण और 13वें और 14वें गुणस्थान को योग का निमित्त है। मतलब यहाँ पर अभी ये सिर्फ बताया जा रहा है भाई हम गुणस्थान तो पढ़ेंगे या गुणस्थान के बारे में समझेंगे तो, लेकिन सबसे पहले कि कौन से कर्म या किसके कारण ये गुणस्थान होते हैं इसकी चर्चा यहाँ पर की बराबर। तो आप लोगों को मैं पहले एक बार बताता हूँ फिर आप लोगों से पूछता हूँ। सबसे पहले तो दर्शन सॉरी मोहिनी कर्म, क्योंकि मैंने जब परिभाषा भी बताया ना कि तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन शब्द मोह जोग भव गुणस्थान। भव मतलब होता है मोह और योग के निमित्त से सबको याद हुआ मोह और योग। तो मोह मोह मतलब मोहिनी कर्म और मोहिनी कर्म के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी बोलो चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के कारण के निमित्त से 4 गुण स्थान बराबर, फिर चारित्र मोहिनी के निमित्त से 8 गुण स्थान और योग के निमित्त से 2 गुण स्थान हो गए 14। नाम आपको याद करना है क्योंकि पिछली क्लास में भी नाम की मतलब याद भी कराया गया था और पूछा भी गया था है ना, अभी भी मैं वही करूंगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए आप सब भी घर से याद कर जाना ठीक। तो सबसे पहले ये समझ आया दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी और योग इनके निमित्त से यहाँ पर गुणस्थान हो रहे हैं। तो ये गुणस्थान किनके हैं? बराबर। तो अपना अपना अपने को इनको क्यों समझना है? क्योंकि हम भी कहा था ना हम भी किसी ना किसी गुणस्थान में हैं। मैं पहला गुणस्थान नहीं कह रहा हूँ किसी ना किसी, क्योंकि हो सकता है वैसा जब समय दर्शन की प्राप्ति कहाँ कहाँ हो सकती है? गर्भवती में। जब नरक गति में तक सम्यक दर्शन हो सकता है तो हम सबको क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है कि इन गुण स्थानों को समझकर हमारे परिणाम कैसे हैं ये समझना है। हमारे परिणाम कहीं इन रूप तो नहीं है मिथ्यात्वादी रूप, और हैं तो उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए बराबर। उसके भी कहते हैं यहाँ पर सभी गुणस्थानों का की परिभाषा और उसका वर्णन आएगा यहाँ पर, तो उसे भी अपन समझेंगे। इतना आप सबको याद हुआ दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी और योग ठीक है, इनके अनुसार आपको 14 गुणस्थान समझना। सबसे पहले यहाँ पर पहला गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ हो रही है। मिथ्यात गुणस्थान दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के निमित्त से होता है, उसमें आत्मा के परिणाम मिथ्यात रूप होते हैं। वैसा आप इंदौर का ना, तो जो मिथ्यात्व स्व शब्द कहा ना, तो स्व मतलब उस रूप होना, किस रूप, मिथ्यात्व रूप। और जब मिथ्यात्व यहाँ पर कहा है, सबसे पहले ये बताइए कि जो मिथ्यात्व कहा तो ऐसा कोई गुण है मिथ्यात्व गुण में, तो क्या है, विभाव। बराबर, किसके विभाव, जीव के स्वयं, किसने किया, जीव ने स्वयं ने किया, कैसे किया या क्यों किया, क्योंकि इसे सच्चा श्रद्धान या उस वस्तु के स्वभाव का के बारे में सच्चे जो सत्य है वह पता नहीं था, इसलिए यह जीव अनादि काल से उसे अन्यथा ही मानता रहा, मिथ्या रूप मानता रहा, और उसी कारण जीव के जो गुण है वो किस रूप परिणाम करते रहे, विकार रूप। बराबर, कौन से, श्रद्धा और बोलो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, ये तीन है ना, तो ये तीनों किस रूप परिणाम करते रहे, मिथ्या के कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों को मिलाकर एक शब्द कह दिया जाता है मिथ्या। बराबर, तो यहाँ पर मिथ्यात् गुणस्थान दर्शन मोहिनी कर्म के उद्देश्य के निमित्त से होता है और उसमें आत्मा के परिणाम ही मिथ्यात् रूप होते हैं। फिर इसके बाद मिथ्यात् के बाद डायरेक्ट कौन से गुणस्थान में जाता है, यदि चौथे गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान के लिए दर्शन मोहिनी कर्म के उपसम छह अथवा छह उपसम निमित्त है। यहाँ पर निमित्त की चर्चा चलेगी कि इसमें क्या निमित्त है और परिणामों की भी बात आएगी, तो भाव कौन से भाव किसमें निमित्त है, इन सबकी चर्चा यहाँ पर चलेगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि गुणस्थान के लिए दर्शन चौथे गुणस्थान के लिए चारित्र मोहिनी कर्म का उपसम छय या छय उपसम निमित्त। बराबर, क्योंकि जो चारित्र मोहिनी कर्म है पहले गुणस्थान में है तो उस जीव के साथ क्या है, चारित्र मोहिनी कर्म है, लेकिन अभी उस जीव को चारित्र मोहिनी कर्म का दर्शन मोहिनी कर्म का क्या करना पड़ेगा, क्षय करना पड़ेगा। अब लेकिन क्षय नहीं हो पाया तो उपसम और क्षयोपसम भी कर सकता है। क्षय तो कहां पर होता है, क्षय समय से कहां पर होता है, केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में, मतलब केवली और श्रुत केवली विराजमान हो उनके समक्ष ही क्षय समय होता है। बराबर, कि यह जीव पूरे कर्मों को क्षय करते हुए और आगे बढ़े, और क्षय करते हुए आगे बढ़ता है तो फिर यह जीव वापस नहीं आता। बराबर, और आगे बढ़ते बढ़ते अपने मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पर चौथे गुणस्थान को लिया कि चौथे गुणस्थान में यह जीव उपसम कर्मों का या दर्शन मोहिनी कर्म इत्यादि का क्या कर सकता है, उपसम कर सकता है, फिर क्षय कर सकता है और क्षय उपसम कर सकता है। तो इनके निमित्त से उपसम सम्यक, क्षय सम्यक और क्षय उपसम सम्यक की प्राप्ति होती है। इस गुणस्थान में आत्मा की निश्चय सम्यक दर्शन पर्याय का प्रादुर्भाव हो जाता है। बराबर, निश्चय सम्यक की पर्याय का प्रादुर्भाव हो जाता है। पर्याय का प्रादुर्भाव हो जाता है मतलब क्या, कि यहाँ पर जो
सम्यक की चर्चा चल रही है तो उसमें क्या हुआ, कौन से नंबर का गुणस्थान की प्राप्ति हुई? चौथे नंबर की। तो गुणस्थान क्या है? नहीं, गुणस्थान क्या है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। पर्याय तो वहां भी एक पर्याय की प्राप्ति हुई ना, हाँ, सम्यक दर्शन रूप पर्याय हुई। तो यहां पर क्या लिखा कि सम्यक दर्शन पर्याय का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रादुर्भाव हो जाता है मतलब प्रकट हो जाता है, बराबर। वहां पर जो जीव सम्यक की प्राप्ति करता है तो उसे वहां पर सम्यक दर्शन की पर्याय का प्रकटपना होता है। अब इसके बाद जैसे पहले और चौथे गुणस्थान की तो बात यहां पर गई, उसके बाद तीसरे गुणस्थान की चर्चा आई है। सम्यक तीसरे सम्यक मिथ्या मित्र गुणस्थान के लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। इस गुणस्थान में आत्मा के परिणाम सम्यक और मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् अथवा उदय रूप होते हैं, बराबर। अब वहां पर जब सम्यक की प्राप्ति हुई तो क्या हो गया था, दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम हो गया था, क्षय हो गया था या क्षय उपशम हो गया था, बराबर। मतलब तुरंत में अभी उदय नहीं था, कब मतलब चौथे गुणस्थान में, लेकिन चौथे से जब तीसरे में गया तो क्या होगा, वहां पर इसमें लिखा ना, देखो इस गुणस्थान में आत्मा के परिणाम सम्यक मिथ्यात् अथवा उदय रूप होते हैं। सम्यक मिथ्यात् गुणस्थान के लिए दर्शन मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। वहां पर फिर से क्या हुआ, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आ गया, बराबर। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि चार गुणस्थान में दर्शन मोहिनी कर्म निमित्त है, कौन कौन से, कौन कौन से दर्शन मोहिनी के लिए कौन कौन से, अभिरसम, बराबर, निष्कास, तासादन, मिश्र और अभिरस सम्यक। तो किस रूप की, पहले दूसरे तीसरे, इनमें तो उदय रूप, कि इनमें दर्शन मोहिनी कर्म का उदय आएगा, और चौथे गुणस्थान में किस रूप दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय या क्षय उपशम रूप, बराबर। फिर से दर्शन मोहिनी कर्म है उसका तीन गुणस्थान में तो किस रूप उदय, किस रूप निमित्त होगा, उदय रूप, पहले दूसरे और तीसरे, लेकिन चौथे गुणस्थान में उसका कैसा निमित्त होगा, उपशम, क्षय और क्षय उपशम रूप, बराबर। अब यहां पर पहले गुणस्थान में औदयिक भाव सभी गुणस्थानों की, मतलब फिर से यहां पर बता रहे हैं कि पहले गुणस्थान में औदयिक भाव, चौथे गुणस्थान में औपशमिक छायिक अथवा क्षय उपशमिक भाव। अभी कहा था ना उपशम, क्षय अथवा क्षय उपशम, तो उनमें भाव कौन से निमित्त होंगे, औपशमिक छायिक अथवा क्षयोपशमिक भाव। और तीसरे गुणस्थान में औदयिक भाव होते हैं, औदयिक भाव मतलब वहां पर कौन से कर्म का उदय, तीसरे गुणस्थान में, हाँ बोलिए, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय। परंतु दूसरा गुणस्थान में दर्शन मोहिनी कर्म की उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम, इन चार अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता, यहां तक नहीं, इसके बाद भी पढ़ना जरूरी है, नहीं रखता मतलब उदय की भी अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए यहाँ दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से पारिणामिक भाव है, किंतु अनंतानुबंधी रूप चारित्र मोहिनी कर्म का उदय होने से इस गुणस्थान में चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा से औदयिक भाव भी कहा जा सकता है। इस गुण स्थान में अनंतान बंदी कर्म के उदय से सम्यक का घात हो गया है, इसलिए यहाँ सम्यक नहीं है और निश्चार्थ की अपेक्षा से अनुदय रूप है। मतलब यहाँ पर देखो, दूसरा गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म की उदय उपक्रम क्षय और श्रोत्तम इन चार अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन इसलिए यहाँ पर दर्शन मोहिनी कर्म की अपेक्षा से पारिणामिक भाव है। मतलब वहाँ पे दर्शन मोहिनी कर्म है और उस अपेक्षा से उसके जो पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव मतलब पारिणामिक भाव कितने प्रकार के, कौन कौन से, जीव, भव्यत और अभव्यत, तो उस रूप वहाँ पर उसके पारिणामिक भाव हैं, लेकिन किंतु अनंतानुबंधी रूप चारित्र मोहिनी कर्म भी उसके वहाँ पर, चारित्र मोहिनी कर्म का भी उसका वहाँ पर उदय है। अनंतानुबंधी इत्यादि कषाय का भी वहाँ पर उसको उदय होने से गुणस्थान में चारित्र, इस गुणस्थान में चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा औदयिक भाव भी कहा जा सकता है। बराबर, उसको वहाँ पर औदयिक भाव भी है, किसकी अपेक्षा, चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा। इस गुणस्थान में अनंतानुबंधी के उदय से सम्यक का घात हो गया, और जब अनंतानुबंधी कषाय हुई तो क्या हुआ, सम्यक दर्शन रहेगा क्या, क्या सम्यक दर्शन तो उस टाइम पे नहीं है, तो सम्यक का घात हो गया, इसलिए यहाँ सम्यक नहीं है और मिथ्यात् की अपेक्षा अनुदय रूप है, और अभी पूरा मिथ्यात् भी नहीं है क्या, लेकिन बस अभी क्या होगा, दूसरे गुण स्थान से मिथ्यात्म में ही जाए। बराबर, अब पांचवे गुण स्थान से आगे की चर्चा अपनी चलेगी, लेकिन पांचवे गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक कौन से कर्म का निमित्त है, चारित्र मोहिनी। बराबर, चारित्र मोहिनी कर्म की अपेक्षा से यहाँ पर अभी बढ़ना है, पांचवे गुण स्थान से चलेगा। इसमें हमें समझना क्या है कि जैसे तेरहवें और चौदहवें गुण स्थान में कौन है, तेरहवें गुण स्थान में कौन जी, तेरहवें गुण स्थान में जितने भी अरिहंत होते हैं वो सब कौन से गुण स्थान में, तेरहवें गुण स्थान, तो उनको भी गुण स्थान है। हाँ, कौन कौन सा गुण स्थान, तेरहवा गुण स्थान, और चौदहवा में है, तो बस उसका समय यहाँ पर मतलब आएगा कि आ आ ई री री री, ये चार आ ई ऊ री री, ये पांच शब्द बोलेंगे, इससे पहले वो मतलब इतने में वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, तो इतने के लिए वो अयोग के लिए, ठीक है, मतलब वह गुण स्थान भी चौदहवा गुण स्थान भी है, लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो मोह और योग की अपेक्षा से गुणस्थान हो रहे हैं, तो कौन सा मोह, मोह में भी कौन सा मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, फिर योग, योग में भी यहाँ पर दो प्रकार के, दो गुणस्थान कहा, तो संयोग और अयोग के। बराबर, इनमें से अपनी चर्चा अब चारित्र मोहिनी कर्म पर के निमित्त होने वाले गुणस्थानों पर चलेगी। पांचवा गुणस्थान, पांचवे गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक नाम देखना, देश विरत आप सबको भी इससे दिख रहा होगा, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्व करण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, इन छह गुणस्थानों के लिए चारित्र मोहिनी कर्म का छठम निमित्त है, इसलिए इन गुणस्थान में छठमी भाव होता है, इन गुणस्थान में निश्चय सम्यक चारित्र पर्याय की अनुक्रम से वृद्धि होती जाती है, और ग्यारहवा उपशांत मोह गुणस्थान आत्मा के पुरुषार्थ से प्रकट हो तब चारित्र मोहिनी कर्म का स्वयं उपशम होता है, इसलिए ग्यारहवें गुण स्थान में औपसमिक भाव होता है। यद्यपि चारित्र मोहिनी कर्म का पूर्णतया उत्तम हो गया है, तथापि योग का सद्भाव से पूर्ण चारित्र नहीं है, क्योंकि सम्यक चारित्र के लक्षण में योग और तथाय आदि के अभाव से पूर्ण सम्यक चारित्र होता है। बारहवां गुण स्थान क्षीण मोह गुण स्थान आत्मा के पुरुषार्थ से प्रकट हो तब चारित्र मोहिनी कर्म का स्वयं क्षय हो जाता है। देखो ग्यारहवें गुण स्थान में उपशम हुआ था और बारहवें गुण स्थान में क्षय, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो छाय सम्यक्त वाला है वह बढ़ते बढ़ते सातवें गुण स्थान और सातवें गुण स्थान के बाद जब श्रेणी मानते हैं तो श्रेणी मानते हैं तो दो प्रकार की श्रेणी कौन कौन सी, उपशम और सपत। तो उपशम श्रेणी जो उपशम श्रेणी पर आगे चढ़ेंगे तो उनका क्या होगा कि सातवें गुण स्थान के बाद वो आगे तो बढ़ेंगे कौन से, आठवें नौवें दसवें और ग्यारहवें, और ग्यारहवें से फिर से वापस आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो छाया सम्यक्त वाले हैं वो क्या करेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे सातवें के बाद, आठवें नौवें दसवें और दसवें के बाद बारहवें। तो यहाँ पर बारहवां गुण स्थान के बारे में बताया कि बारहवां गुण स्थान क्षीण मोह गुण स्थान आत्मा के पुरुषार्थ से प्रकट हो तब चारित्र मोहिनी कर्म का स्वयं क्षय होता है, इसलिए वहाँ छाया भाव होता है। इस गुण स्थान में भी ग्यारहवें गुण स्थान की भांति सम्यक चारित्र की पूर्णता नहीं है, सम्यक ज्ञान यद्यपि चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर बाबर की अपन पढ़ते हैं फिर आगे की चर्चा अपन करेंगे। यद्यपि आत्मा के ज्ञान गुण का विकास अनादिकाल से प्रभाव रूप चल रहा है, तथापि मिथ्या मान्यता के कारण वह ज्ञान मिथ्या रूप था, किंतु चौथे गुण स्थान में जब निश्चय सम्यक प्रकट हुआ तब वही आत्मा की ज्ञान पर्याय सम्यक ज्ञान कहलाने लगी, और पंचम आदि गुण स्थान में तपश्चरण आदि के निमित्त के संबंध से अवधि मना पर्याय ज्ञान भी किसी किसी जीव के प्रकट हो जाते हैं। मना पर्याय ज्ञान किनको प्रकट होगा, मना पर्याय ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मुनिराजों को ही प्रकट होता है, बराबर। और अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान तो देव और नारकियों को तो होता ही है, बराबर, और मनुष्य एक्सपीरियंस में भी प्रकट हो सकता है, और बाकी के जीवों को सबको क्या मति और श्रुति ज्ञान तो है ही। तथापि केवल ज्ञान हुए बिना सम्यक ज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती, इसलिए बारहवें गुण स्थान तक यद्यपि सम्यक दर्शन की पूर्णता हो गई है, क्योंकि छाया सम्यक के बिना छपट श्रेणी नहीं कही जा सकती, और छपट श्रेणी के बिना बारहवें गुण स्थान में नहीं पहुंचा जा सकता। तथापि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुण अभी तक अपूर्ण है, इसलिए अभी तक मोक्ष नहीं होता। बारहवें गुण स्थान में चारित्र गुण छाया भाव के कारण पूर्ण हो चुका, किंतु आनुषंगिक अन्य गुण के गुणों के चारित्र पूर्ण नहीं है। इसलिए यहाँ पर अभी क्या बताया कि भाई चारित्र और सम्यक ज्ञान कब पूर्ण होंगे, सम्यक ज्ञान की पूर्णता कब है कि जब केवल ज्ञान और सिद्ध परमेश्वर को कौन सा अनंत ज्ञान, जब अनंत ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक यह पूर्णता नहीं होती। इस प्रकार अभी यहाँ पर अपना पहले से चार दर्शन मोहिनी और पांचवे से 12 गुणस्थान तक चारित्र मोहिनी और इसके बाद अपना 13वां और जो 14वां गुणस्थान है जो कि किसके निमित्त से होता है, योग के निमित्त से, उसकी चर्चा अपनी आगे चलेगी। अभी अपनी इन पर विराम को प्राप्त करते हैं।
निज निधि निज में बताई यह परम उपकार है, जिसके लिए दिन वाणी मात को बंदना सतवार है।
जब लोग द्वादशांग में जिन वाणी मात नो